अमृत है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक में से आमोस नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा है कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दास आमोस के द्वारा पड़ोसी राज्यों और तब इसराइल और यहूदा के लिए दंड की घोषणा करता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम एक साथ मिलकर आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। आज जब हमारे श्रोता भाई बहन अलग अलग स्थानों पर रेडियो के माध्यम से आपके वचन को सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारी प्रार्थना है पिताजी कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचनों में से सुनते हैं तो हम सीखने पाएं, अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं और उसके अनुसार से चलने पाएं। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान की हर एक छल प्रपंच से आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं। पिताजी, आप उन्हें शांति दीजिए, उन्हें चंगाई और छुटकारा दीजिए, ताकि वे स्वस्थ भले चंगे होकर आपके नाम को धन्य कहने पाए। आज के वचन के द्वारा आप हम में से हर एक से बोली और बातचीत कीजिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल वंशियों को प्रतिज्ञा का देश दिया और वहां के लोगों का सर्वनाश किया, क्योंकि वे 420 वर्ष के बाद भी पाप से विमुख न हुए थे। परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी थी कि वे अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लाएं, परंतु हम देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख वे कैसे सदाचार में अपने आप को रखे। उन्होंने वही काम किया जो वहां के निवासी करते थे। अतः परमेश्वर कहता है कि वह असमंजस में है कि क्या अपनी प्रजा को क्षमा करे या नहीं। वह पाप का दंड अवश्य देगा। जी हां, कोई भी क्यों ना हो, वह उसे दंड अवश्य देगा। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे थे आमोस नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 14 से 16 पद में, जहां पर हमने यह भी देखा कि कुछ विचारकों का सोचना है कि यह पद आमोस द्वारा व्यक्त भूकंप के संदर्भ में है, परंतु हमारे विचार में यहां भूकंप का कोई भी संदर्भ नहीं है। इसराइल वास्तव में एक शक्तिशाली राज्य था। परमेश्वर ने उनके बैरियों को उनसे दूर रखा था, परंतु अब उनकी शहरपनाह गिर गई थी और बैरी भीतर प्रवेश कर गए थे। उनके बलवंत पुरुष बलहीन हो गए थे। उसका कारण यही था कि इन्होंने परमेश्वर की विधियों को नहीं माना। मेरे मित्रों, हम यह देखते हैं कि जब कभी हम परमेश्वर की विधि को नहीं मानते, उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते, उसके वचनों का पालन नहीं करते, तो निश्चय ही इसका परिणाम हम सब के लिए भी सर्वनाश होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में बंदी बनाकर भेज दिए गए। परमेश्वर ने उन्हें बंधुआ होने दिया। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हमें परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। वचन की व्याख्याएं तो अलग अलग प्रकार से दी जाती हैं, तरह तरह के अर्थ निकाले जाते हैं, समझाए जाते हैं, परंतु वचन कभी बदलता नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसराइल से जो कुछ भी कहा, आज वह हमसे भी वही बात कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास देर है, अंधेर नहीं। परमेश्वर धीरजवंत है, दया का सागर है। वह चाहता है कि हम मन फिराएं। वह हमें मन फिराव का समय देता है, जैसा कि उसने एमोरियों को 420 वर्ष दिए कि वे उसकी ओर फिरें, परंतु वे नहीं फिरे। आप भ्रम में न रहें, परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इसलिए परमेश्वर के धीरज को उसकी दुर्बलता आप न समझें, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जानता है। और वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य बचाया जाए, उसकी ओर लोग फिर जाएं। मेरे प्रियो, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी के क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करते हैं। इस अध्याय का विषय है इसराइल के घराने पर परमेश्वर का दोष। आइए हम पढ़ें आमोस नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, हे इसराइलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूं। इस समय परमेश्वर इसराइल के विभाजन पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह कहता है कि वह इसराइल के पूरे घराने से कह रहा है जिन्हें वह मिस्र से निकाल करके लाया है। उसकी दृष्टि में तो इसराइल एक ही परिवार था, चाहे राज्य 2 हो गए थे, 12 गोत्र का एक ही जाति था। मेरे प्रियो, यहां पर हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं कि उसके देखने का दृष्टि एक बिल्कुल भिन्न है, हम में से हर एक के दृष्टि से भिन्न है। वह 12 गोत्र को एक ही जाति के रूप में देखता है। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। मेरे प्रियो, यहां पर ध्यान दीजिए, यह वास्तविकता है जिससे प्रकट होता है कि आमोस कैसा भविष्यद्वक्ता था। वह व्यर्थ की बातें करने की अपेक्षा सीधा कहता है कि परमेश्वर इसराइल को उसके पापों का दंड देगा। यह बड़े ही दुख की बात है कि इसराइल के अगुओं ने और याजकों ने आमोस की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा इतिहास का रूप कुछ और होता। आज हम सब के लिए भी यही बात है। कई बार परमेश्वर का वचन उसके दासों के द्वारा हम तक पहुंचता है, हमें चेतावनी दी जाती है, परंतु हम ध्यान नहीं देते, हम इसे हल्के में ले लेते हैं और इसका परिणाम यही होता है कि हमारे जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। यहां पर लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया है। जल प्रलय के बाद भी मनुष्य पाप से दूर नहीं हुआ था। बेबीलोन का गुम्मट बनाते समय मनुष्य परमेश्वर से दूर जा चुका था। परिपूर्ण ईश्वर त्याग, उसके बाद परमेश्वर ने कस्तियों के ऊर नगर से एक पुरुष को बुलाया और कहा कि वह अपने मूर्ति पूजक कुटुंब से बाहर निकल आए और उस स्थान की ओर बढ़ चले जो वह उसे बताएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वह एक मनुष्य को ले जाएगा, अब्राहम से एक जाति तैयार करेगा और उस जाति को वह वहां बसाएगा। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्ही पर मन लगाया। बेबीलोन के गुम्मट के निर्माण के पीछे मनुष्य का उद्देश्य बाढ़ से बचना नहीं था। वह सूर्य देव की पूजा के लिए एक वेदी थी। उनकी समझ में जल प्रलय का कारण था कि अंधकार और आंधी के देवताओं ने बाढ़ का प्रकोप प्रकट किया था। अब वे सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते थे। उस घाटी में सूर्य की उपासना आम बात थी और आज तक चल रही है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे पारसी धर्म। परमेश्वर ने उनमें से अब्राहम को चुना और उससे एक वंश तैयार किया और उन्हें अपना वचन दिया। उसकी मनोकामना थी कि वे लोग उसका वचन संपूर्ण विश्व में पहुंचाएं। परमेश्वर का यह उद्देश्य हमारे लिए भी वैसा ही है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं उसके वचन का 66 पुस्तकों का प्रसारण कर रहा हूं, ताकि आप भी परमेश्वर के वचन की सत्यता को जानें, उसके जीवन को अपने में ग्रहण करें और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। यहां पर लिखा है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इसराइल का परमेश्वर के साथ अद्वितीय संबंध था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी। उन्हें कठोर दंड देने में परमेश्वर का कारण यही था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। तो देखा आपने, प्रकाशन उत्तरदायित्वों को बढ़ाता है। एक देश जो ज्योति में वास करता है, उनका उत्तरदायित्व अंधकार में वास करने वाले देश से कहीं अधिक होता है। अतः यह परमेश्वर का सिद्धांत है कि ज्योति में वास करने वालों को अंधकार में वास करने वालों की तुलना में अधिक कठोर दंड दिया जाएगा। क्योंकि आप ज्योति में रहते हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि ये ज्योति की चमक आपके पड़ोसी राज्यों, आपके पड़ोसियों, आपके मोहल्लों को भी मिलना चाहिए। अर्थात परमेश्वर का आशीष आपको बांटना है। प्रभु यीशु ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कुछ को अधिक कोड़े और कुछ को कम कोड़े लगेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं संसार के किसी कोने में अंधकारवासी निवासी रहना अधिक पसंद करूंगा, अपेक्षा इसके कि रविवार की सुबह आराधनालय में बैठकर सुसमाचार सुनूं और कुछ न करूं। परमेश्वर का वचन सुनने वाले को वचन न सुनने वाले से अधिक लेखा देना होगा। अतः दंड के अंश अलग अलग होंगे। मेरे प्रियो, यह आज हम सब के लिए भी बहुत गंभीर बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने तक सीमित रखते हैं। न हम खुद बदलते हैं, न उस वचन पर चलते हैं, न दूसरों को सुनाते हैं। इसलिए वचन हमें यह बताता है कि हमें उसका उत्तरदायित्व ठहराया गया है और हमसे लेखा लिया जाएगा। परमेश्वर कहता है कि वह उनके अपराधों का दंड उन्हें अवश्य देगा। आज मनुष्य परमेश्वर के प्रेम के विषय सुनना अधिक पसंद करता है। परमेश्वर का प्रेम वास्तव में महान है और मुझसे अधिक किसी ने परमेश्वर के प्रेम की चर्चा नहीं की होगी। हमें उसमें स्थिर रहकर आनंद करना है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु के क्रूस से प्रकट हुआ है। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है, 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, क्रूस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है और यदि मनुष्य उस प्रेम को तुच्छ जाने तो वह निश्चय ही दंड पाएगा। कुछ लोग दंड के पक्ष में नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से वे जगत का संचालन नहीं करते हैं। मेरे विचार में उनका सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमेश्वर स्पष्ट कह चुका है कि वह पवित्र है, धर्मी और न्याय करने में खरा है। वह दंड देगा। पाप का दंड तो तर्क सम्मत परिणाम है। मेरे प्रियो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर पाप का दंड अवश्य ही देता है। देर से ही सही, परंतु अवश्य वह उसका बदला देता है। मैं नहीं जानता कि इस समय आपका जीवन किस प्रकार का जीवन है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बातों को जानता है। हो सकता है कि आपके माता पिता, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार इस बात को नहीं जानते हैं, परंतु ध्यान रखें कि परमेश्वर उसे जानता है और उसका दंड आपको अवश्य देगा। परंतु एक बात और है, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आज आप उस दंड से बचना चाहते हैं तो आप अपने पापों से प्रायश्चित करके उसे ग्रहण करें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आने दें और तब आप उस दंड से बच सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके उस दंड को क्रूस पर ले लिया ताकि आप बच जाएं, उस दंड से बच जाएं। आपको एक काम करना है कि उसे आपको ग्रहण करना है। अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देखते हैं कि आमोस की सत्यता के विषय अनेक प्रश्न उठेंगे और उनका उत्तर भी दिया जाएगा। वह कुछ आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करता है। वह तकुआ के रेगिस्तानी छोर से आया था और वहां के अपने अनुभवों को उसने प्रचार में काम में लिया है। वह प्रकृति से सबक सीख चुका था। उसने जो बातें सीखी थी वे आज के लोगों को सिखाना और सीखना आवश्यक है। मेरे बेटे के स्कूल वालों ने बच्चों को स्कूल की ओर से एक दूधशाला में घुमाने के लिए ले गए और मेरे बेटे ने घर आकर के हमें बताया कि वह दूध उत्पादन बाजार में गया था जहां से दूध बनने के पश्चात बाजार में लाया जाता है और उस अनुभव को बड़े आनंद के साथ उसने बताया। मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि आमोस एक ग्रामीण था और उसने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा था और उसने इन सारे अनुभवों को अपने प्रचार कार्य में उपयोग में लिया। आइए हम सुनते हैं उसका पहला प्रश्न। आमोस की पुस्तक 3:3 में लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ध्यान दीजिए, क्या दो व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं? जी हाँ, परंतु जब तक वे सहमत ना हो अधिक समय साथ में नहीं रह सकते। मैंने एक दिन एक नव दंपति को देखा, वे हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। अकस्मात ही कुछ हुआ कि पत्नी ने पांव पटक कर अपने घर का मार्ग लिया और पति आगे बढ़ता चला गया। अब वे साथ साथ नहीं चल रहे थे क्योंकि उनमें किसी बात को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो गया था। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहां पर यही पूछा गया है। यहां कारण और कार्य का सिद्धांत लागू होता है। यदि आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो आपको उससे सहमत होना ही होगा, जिसका परिणाम होगा आप उससे सहमत होंगे तो उसके साथ चलेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपसे सहमत होकर आपके साथ चले। इसके विपरीत, हमें परमेश्वर के पास जाकर उससे सहमत होना होगा। किसी ने कहा है, परमेश्वर अपने रथ में जयवंत चला आता है। यदि आप उसके रथ के पहियों के नीचे दबना नहीं चाहते हैं तो उचित होगा कि आप रथ में बैठकर उसके साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने जगत का संचालन अपनी समझ से करता है। वह अकिंचन मानव से किसी भी प्रकार का कोई सलाह या परामर्श नहीं लेता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। आमोस अपने पहले प्रश्न में एक महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हुए देखेंगे आमोस 3:4 में, क्या सिंह बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गुर्राएगा? फिर यहां पर ध्यान दीजिए, कहता है, क्या सिंह बिना आहेर पाए वन में गरजेंगे? कदापि नहीं। जब तक शेर अपने शिकार पर न झपटे वह दबे पांव चुपचाप आगे बढ़ता है। शिकार पकड़ लेने के बाद ही आप उसका गरजना सुनते हैं। आगे कहता है, क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मान में गुर्राएगा? नहीं, उसकी मां उसके लिए शिकार करके लाती है और तब वह आवाज निकालता है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि कारण होने पर ही आप परिणाम देखेंगे। परमेश्वर के दंड का कारण मनुष्य का पाप है, जब तक मनुष्य पाप में नहीं होता है, परमेश्वर किसी भी रीति से मनुष्य को दंड नहीं देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसका भी उपाय किया है कि हम पाप के दंड से बच जाएं। उसका उपाय यही है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। जिस प्रकार से एमोरियों को 420 साल का समय दिया गया कि वे अपने मनों को फिराएं, आज वह मुझे और आपको भी समय देता है ताकि हम अपने मनों को फिराकर उसकी ओर आ जाएं। हो सकता है कि आज के बाद कल का जीवन मेरे पास में ना हो, आज का मौका बहुमूल्य है, आप इसे ना छोड़ें। आज ही निर्णय लें और प्रभु ईश्वर के पास आ जाएं, ताकि आप उस भयानक पाप के दंड से बच जाएं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि हर एक मनुष्य उसके निकटता में आए, उसके रथ में साथ चले, न कि रथ के नीचे। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन के लिए निर्णय लें और प्रभु से कहें कि प्रभु आप मेरी सहायता करें, निश्चय ही वह आपकी अगुवाई करेंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में एक उत्तम निर्णय लिया है और अपने आशीषों को आप दूसरों के साथ भी बांटने पाएंगे। प्रभु आप सबके साथ हो।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।